लोग आमतौर पे पूछते भी हैं कि जब पाकिस्तान की रियासत ने कानून बना के एक चीज़ को तय कर दिया है तो अब गामदी साहब मसलन उस पर तनकीद क्यों करते हैं, अगर करारदाद मकासद कानून का हिस्सा है, इसी तरीके से ये तय कर दिया गया है कि अहमदियों की क्या नौीयत होगी रियासत के अंदर, तो अब इस पर बात करना तो दर हकीकत एक तरफ ये कहना कि नज़्म इज्तमाई और रियासत के जो फैसले हैं उनको माना जाएगा और दूसरी तरफ उसको चैलेंज किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं?
ये बड़ी अजीब बात है। मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ तो हैरान होता हूँ। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कानून भी बना दिया जाए, गलत या सही, उस पर नकद का हक आपको नहीं है। तो ये कवानीन जब नहीं बने थे, उस वक्त भी कुछ कवानीन थे,
जी
उन कवानीन को तब्दील करके ये कवानीन बनाए गए।
जी
मिसाल के तौर पर, इससे पहले भी तौहीन रिसालत का एक कानून मौजूद था,
जी
अंग्रेज़ों के ज़माने से बुरा भला मौजूद था। तो आपने उसको तब्दील किया, तो क्यों तब्दील किया? इसलिए कि कानून बन जाए तो फिर तो वो कोई अबदी सदाकत हो जाती है। नहीं, कानून के बारे में सही बात यह है कि रियासत की सतह पर जब आप कोई कानून बनाते हैं तो कानून कानून की हैसियत से जब उसको पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया, सदर ने उस पर दस्तखत कर दिए, वो कानून बन गया। उस कानून का नफाज होगा, वो कानून मुझ पर भी नाफिज होगा। जिस चीज़ से हमारे दीन में रोका गया वो ये कि हम उसके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, यानी कानून को अमलन मानेंगे। इसको आप इस तरह देखें कि मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता जैद से कत्ल हो गया, मुकदमा अदालत में गया, इल्ज़ाम बकर पर लग गया, और कुछ ऐसे शवाहद जमा हुए कि बकर को फांसी की सज़ा हो गई और जैद को रिहा कर दिया गया। यानी कातिल और था लेकिन सज़ा और आदमी को हो गई। वो जिसको सज़ा हुई है वो ये जानता है ना कि ये गलत हुआ है,
जी
लेकिन कानून का नफाज उस पर हो जाएगा। ऐसा ही होगा
जी
ना?
ऐसे ही
तो
होगा,
आप कह रहे हैं कि उसको ये हक भी नहीं है कि वो ये कहे कि ये गलत हो रहा है,
यानी अपने ऊपर जुल्म पर वो मुनादी नहीं कर
मुनादी
सकता।
नहीं कर सकता। ये क्या बात है? तो इसलिए कानून पर तनकीद की जाएगी, इसी से तो कानून बेहतर होते हैं, इसी तरह वो बनते हैं। तनकीद अलबत्ता शाइस्तगी के साथ की जाएगी, हंगामा नहीं किया जाएगा, एहतजाज नहीं किया जाएगा। यानी हंगामा और एहतजाज जिसमें गोया लोगों की जान माल को ख़तरा होता है, आपने कोई मुतालबा करना है, कोई बात कहनी है, तो दुनिया में उसके लिए जो महज़ब तरीके हैं वो आप इख्तियार करेंगे। तो मैं तो बहुत से कवानीन पर तनकीद करता हूँ और उनको गलत समझता हूँ। और तो छोड़िए, यानी एक बज़ाहिर हमारे यहाँ जो जदीद तबका है उसका महबूब कानून है, और वो कानून कौन सा है? फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, यानी जो निकाह तलाक के बारे में अयूब खान के ज़माने में 1961 का फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जिसको कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो जदीद तबका है वो उसका बड़ा महबूब कानून है, इसलिए कि उसमें हमारे फुकहा ने जो तलाक के कानून में गलतियाँ की हैं उसका इजाला करने की कोशिश की गई। मैंने उस कानून का बहुत दिक्कत नज़र के साथ मुताला किया, मुझ पर यह वाज़ है कि उस कानून में बड़ी गलतियाँ हैं, मैं तो उस पर भी तनकीद करता हूँ। उसमें तलाक के लिए जिस तरह का प्रोसीजर इख्तियार किया गया है उसमें बाज़ चीज़ें सराहतन कुरान के ख़िलाफ़ हैं, तो अगर आप उस पर तनकीद नहीं करेंगे तो वो कैसे दुरुस्त होगा? इस वक्त एक और मिसाल ले लीजिए। इस वक्त सूद की हिफाजत के कवानीन मौजूद हैं, यानी अगर सूद की हिफाजत के कवानीन मौजूद ना हों तो कल आप बैंक से कर्ज़ा लें और इनकार कर दें। हिफाजत के कवानीन मौजूद हैं
जी
वो
हाँ
आपके यहाँ, उन पर हम तनकीद कर रहे हैं ना कि उनको
जी
तब्दील होना चाहिए, और सूद दीन में ममनू करार दिया गया है, लिहाजा हमें अपने निज़ाम को उससे पाक करना चाहिए। तो फिर ये सारे काम बंद कर दें, फिर तो कोई काम भी नहीं होना चाहिए। तो तनकीद इसलिए की जाती है कि कोई चीज़ गलत है तो उसे सही कराया जाए, उसकी गलती वाजे की जाए। ये तनकीद है जो जमहूरियत की रूह है। इसीलिए जमहूरियत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप इलेक्शन करवा दें, उसका एक नागजीर तकाजा ये है कि आप आज़ादी राय के साथ तनकीद करने दें। हम असल में इल्मी मिजाज ही नहीं रखते, हमारा मामला ये है कि हमारा आलिम भी जब काम करता है तो वो ये नहीं कहता कि ये बात होनी चाहिए, इसकी दलील ये है, वो ये कहता है कि इस पर हम सब का इजमा है, सब उलमा ये बात कहते हैं, इस वजह से हम ये नहीं होने देंगे। ये होने देंगे का जो अंदाज़ है ये है असल में जो हमारे यहाँ मज़हबी अंदाज़ बन गया है। तो मैं तो इस अंदाज़ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ।
जी
आप कानून की पाबंदी करेंगे, कानून के सामने सरे तस्लीम खम करेंगे अमली तौर पर, लेकिन अगर वो कानून गलत है और आपके गले में वो फांसी का फंदा डाल रहा है, तो आप तख्ते दार पर गलत है, उसको बताना पड़ेगा कि ये गलत है। तो इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कानून है उनमें चंद दर्चंद गलतियाँ हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है, यानी हमारे यहाँ जो माहरीन कानून हैं, इसी तरह जो दीन के माहरीन हैं, उनको मुसलसल उन पर तनकीद करनी चाहिए, बताना चाहिए। और ये एक बड़ी सेहतमंद डिबेट है, ये होती रहनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटियों में होनी चाहिए, ये मजालिस में होनी चाहिए, इस पर सेमिनार मुनक़द होने चाहिए, क्योंकि इससे राय आमा तैयार होती है। राय आमा तैयार होती है तो फिर आपके जो नुमाइंदे मौजूद होते हैं उनको भी इसका शऊर पैदा होता है, और फिर हुकूमतों को वो ताकत हासिल होती है कि वो एक गलत कानून को तब्दील करते। तौहीन रिसालत के कानून को आप देखें, इस वक्त तमाम जितने जय्यद उलमा हैं, अकेले में मिले उनसे, वो मानते हैं कि ये हनफी फिका के भी खिलाफ है,
बल्कि अब तो कह रहे हैं इब्ने तैमिया की जो राय थी उसमें भी बाज़ चीज़ें हैं जिस पर अमल नहीं हुआ, जिसके
उस
तहत
पर भी अमल नहीं हुआ। यानी ये कानून ये नहीं है कि ये मेरी या आपकी ताबीर के खिलाफ है, ये हनफी फिक के भी खिलाफ है, और बिल्कुल बेबुनियाद कानून बनाया गया है। लेकिन हौसला नहीं होता तनकीद करने का, मैं ही कर रहा हूं ना
जी
बरसों से, क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमने लोगों की तरबियत ये कर दी है कि वो जज्बाती तरीके से बातें सुनते हैं। अल्लाह के पैगंबर के नाम पर और उनकी हुर्मत के नाम पर खुद उनकी हिदायत के खिलाफ कानून बना दिया गया है, और नाफिज़ मुल्क में उसके नतायज आप देखिए। तो इस वजह से कानून पर तनकीद ये तो सुबह शाम होनी चाहिए, अदालतों में होनी चाहिए, मजालिस में होनी चाहिए। अगर कोई कानून गलत है, मैं तनकीद कर रहा हूँ, अच्छा आपके नज़दीक सही है तो आप उसके दलाइल दीजिए, ताकि कौम का जहन बने। ये जो आम लोग होते हैं, कोई बेचारा कारोबार कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई तबीब है, कोई साइंसदान है, ये सारे के सारे माहिरीन कानून तो नहीं होते ना, तो इनका जहन कैसे बनेगा? अवामी नुमाइंदों का जहन कैसे बनेगा? कानून की गलतियां पार्लियामेंट पर कैसे वाजे होंगी? एक दिन में नहीं होती, इसके लिए बरसों आपको तनकीद के अमल से गुजारना पड़ता है, तब जाके लोग पहले से मानी हुई बातों के बारे में सुनने के लिए तैयार होते हैं। मैं ऐसे दसियों लोगों को देखता हूँ जब मैं बात कर रहा होता हूँ, कि उन्होंने जो चीज़ें सुनी होती हैं पहले से, वो बात अपने कान बंद करके मेरी बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते कि ये बात गलत हो सकती है, सही हो
जी,
सकती है,
ऐसा होता
क्योंकि हमारी तरबियत ही ये नहीं है कि अजनबी से अजनबी बात भी अगर कोई आई है तो इल्म के तरीके पर या शाइस्तगी और तहजीब से बात की जा रही है, तो हम सुने उसे। यानी थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से पहले से पढ़ी हुई और सुनी हुई चीज़ें निकाल दें और उस बात को सुने, उसके दलाइल का मुताला करें, उसके बाद राय कायम करें। तो हमारे जैसी कौम को किसी गलती पर मुतनब्बे करना कोई आसान काम है? आप कहते हैं कि ये एक तकरीर से हो जाएगा, मुसलसल तनकीद ही है कि जो इस तरह की चीज़ों को दुरुस्त कर सकती है, तो तनकीद होगी। और हर हाल में इसी तरह एक दिलचस्प चीज़ तो आपने देखा, अक्सर लोग इसी जैल की कहते हैं, वो ये है कि मैंने ये कहा है और मेरी किताबों में ये चीज़ मौजूद है कि रियासत का कोई मज़हब नहीं होता।
जी
अब वो कहते हैं कि अच्छा फिर आप ये क्यों कहते हैं कि रियासत को जुमे का अहतमाम करना चाहिए?
जी
मैं रियासत से नहीं कह रहा, हुक्मरान
जी
से कह रहा हूँ।
अगर वो
हुक्मरान का
मुसलमान है।
मज़हब होता है,
जी,
यानी आप देखें कि अमेरिका का हुक्मरान वो चर्च में जाता है, वो जाता है, रियासत नहीं जाती। तो
जी
रियासत का मज़हब नहीं होने का मतलब ये है कि जिस शख्स को हमने हुक्मरान बनाया उसका मज़हब नहीं है, उसको अपने मज़हबी तकाजे पूरे करने हैं। तो हमारे दीन में हुक्मरान को बाज़ चीज़ों का हुक्म दिया गया है, या हुक्मरानों को, पार्लियामेंट को कुछ हदायत की गई हैं, वो बहरहाल वाजिबुल इताअत है मुसलमान होने की हैसियत से। तो मैं दोनों बातें बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, इस पर कोई तजाद नहीं है। रियासत का कोई मज़हब नहीं होता, रियासत मेरी भी है मुसलमान की हैसियत से, बुद्ध की भी है, हिंदू की भी है, मसीह की भी है, उसमें कोई तफरीक नहीं।
ठीक,
आज की कौमी रियासत असल में तमाम अकवाम की रियासत होती है, उसमें सब बराबर के शहरी हैं। लेकिन अक्सरियत से जो हुक्मरान बन जाते हैं, उनका अगर मज़हब है तो उन्हें उस मज़हब के अहकाम पर अमल करना है, उन्हें तालीम भी दी जाएगी, तवज्जो भी दिलाई जाएगी। ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन आदमी ना सुनने समझने के लिए तैयार हो तो वो ऐसे ही अपना दिल खुश करता रहता है।
ठीक। अरे हम सब एक और ज़िमनी पहलू इसी बहस में, एक दफ़ा आपसे गुफ्तगू में ज़ेर बहस भी आया था कि आपको अगर मसलन रियासत की किसी मनसब पे फ़ैसला करने की जगह पर बिठाया जाए तो आपने फरमाया था कि अगरचे आपकी राय मसलन मुर्तद की सज़ा के बारे में मुख्तलिफ है, लेकिन फैसला आप भी जो राइज कानून है, अगरचे आप उसको गलत समझते हैं, उसके मुताबिक करेंगे। हमारे यहाँ एक रविश ये भी है कि बसा औकात एक फर्द की राय से कोई हुक्मरान मुतासर हो गया तो वो उसको थोपने की कोशिश करता है सोसाइटी के ऊपर, हमने देखा अपने माजी में भी। इस रवैये को आप कैसे देखते हैं, और वो मिसाल भी जेरे बहस अगर आप लाएं कि जब रजम की बहस हुई और आपको खुद इस्लामी शरीय अदालत में जाना पड़ा तो वहां पर भी आपने यही मौकफ पेश किया।
नहीं, मैं गया ही नहीं, मैंने माजरत कर दी। यानी मुझसे खुद चीफ जस्टिस ने घर में आके बात की और उन्होंने कहा कि हमने तो आप लोगों की राय के मुताबिक फैसला दे दिया है। वो फैसला शाये हो गया था पाकिस्तान टाइम्स में उस ज़माने में, तो मैंने कहा आपने गलत किया। तो वो हैरान हो गए कि भाई आप लोगों की राय पर फैसला दिया।
जी
मैंने कहा जी हम राय दे रहे हैं, हम तनकीद कर रहे हैं, हम ये हक मांगते हैं कि हमें अपनी बात कहने दी जाए, लेकिन हमारी इस राय को कौम की ताईद हासिल नहीं है। तो इसलिए कानून तो कौम की पार्लियामेंट की ताईद से बनना चाहिए,
अक्सरियत से बनेगा जी।
अक्सरियत से बनेगा। यानी वो कानून मेरे नज़दीक गलत हो सकता है, लेकिन उसके बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी ताईद हासिल हो। तो हम अपनी बात कह रहे थे, उसको बयान कर रहे थे, करते रहते, हो सकता है कि हमारी कौम में अक्सरियत की राय वही बन जाती आज 10 साल बाद, 100 साल बाद। तो इस वजह से हमें तो इंतज़ार करना है उस वक्त का। लेकिन ये जो कुछ आपने किया है ये कानूनी लिहाज से गलत है। यानी राय ठीक आपने कायम की, लेकिन कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। कानून से मुराद क्या है कि कानून की बुनियाद असल में ये है कि जब किसी कौम में आप किसी कानून का नफाज करते हैं तो ये देखते हैं कि अक्सरियत किस चीज़ की पुश्त पर खड़ी है। इसी वजह से फितरत के जो कवानीन हैं, जो इंसान के अंदर वदियत किए गए हैं, वो जिस वक्त उर्फ की सूरत इख्तियार करते हैं तो हम उसे कानून का माखज कहते हैं।
ठीक
उर्फ क्या चीज़ है? यानी फितरत के किसी तकाजे को एक रस्म या रिवायत या रिवाज की सूरत में किसी कौम में इख्तियार कर लिया गया, ये उर्फ ही है ना, अल्लाह ताला ने भी इसको कबूल किया। तो इस तरह से गोया जिस चीज़ के पीछे किसी कौम की ताकत नहीं है, एक बहुत ही आला दर्जे का शख्स हो सकता है, आप उससे मिलें और आप कहेंगे कि ये तो असल में नेकी और तकवा और इल्म और दानिश का नमूना है। भाई कौम की ताईद हासिल नहीं है तो वो हुक्मरान बना दिया जाए,
नहीं, वो तो
यानी मैं
इम्पॉसिबल।
आपको साजिश करके बना दें। नहीं, दूसरा उसूल है वो ये है कि कौम की ताईद हासिल होनी चाहिए। तो जिस कानून के पीछे कौम की ताईद नहीं है, अक्सरियत जिसके पीछे नहीं खड़ी, वो कानून बेबुनियाद कानून होगा सियासी लिहाज से, इल्मी लिहाज से वो बड़ी मुहकम बात हो सकती है।
लेकिन हम सब अमली लिहाज से अगर आप देखें तो आप लोगों की राय आपके नज़दीक कुरान और सुन्नत के दुरुस्त फहम पे मबनी थी, तो अगर वो राइज हो जाती तो अल्लाह की सही बात सोसाइटी में राइज हो
राइज
जाती ना।
कैसे हो जाती? होगी ही नहीं राइज, चुनाचे ऐसा ही हुआ, नहीं हुई। यानी उसके बाद हुकूमत को मजबूर होना पड़ा कि वो उस पूरी अदालत को तोड़े, उसमें उलमा इसी के नतीजे में आए। अगर वो हमारी राय पर फैसला न देते तो उलमा को भी शरफ हासिल ना होता कि वो जज बने। वो बने, उन्होंने फिर उस फैसले को कालेअदम करार दिया। तो ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह आप देखिए कि इस वक्त ये फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये उलमा के नज़दीक भी ठीक नहीं है, उस पर तनकीद करते रहते हैं। उनकी तनकीद के पहलू और हैं, लेकिन मेरे नज़दीक भी ठीक नहीं। यानी इसमें बहुत गलतियाँ हैं, कुरान मजीद की रूह से गलतियाँ हैं, और ये सही कानून नहीं बना हुआ। इसको कबूल किया आपकी कौम में? नहीं कबूल करती। वो आज भी जाके अपने उलमा से फतवा लेती है, हो नहीं सकती कबूलियत। तो ऐसे कवानीन कभी नाफिज नहीं करने चाहिए, ये उसूली बात है। कानून वो चीज़ बनेगी जिसके पीछे पार्लियामेंट की अक्सरियत खड़ी है, और पार्लियामेंट की अक्सरियत जाहिर है कौम से एतमाद लेती है ना। तो अब सारे के सारे उलमा एक दूसरी राय रखते हैं। इस वक्त देखें ये कितनी बड़ी वबा पैदा हुई हमारे मुल्क में, चूंकि उलमा एक ताकत की हैसियत हासिल कर चुके हैं, रियासत उनको हासिल है मसाजिद में, तो उन्होंने हुकूमत को भी उस तजब्जुब में मुब्तला कर दिया कि वो लॉकडाउन के बारे में वो फैसला नहीं कर सकी मस्जिदों के बारे में, जिसकी ताईद सब अहले इल्म कर रहे हैं, माहरीन तिब कर रहे हैं। यानी इस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि हुकूमत माहरीन तिब की राय को मानने के लिए मजबूर थी, करना था उसको ये, क्योंकि लोगों की जान के खतरे का मामला है, वो भी नहीं कर सकी। जब तक आप अपनी कौम को कानून में, हुकूमत में, नज़्म में आप ये नहीं कर सकते, और मैं भी कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरी किसी राय को इस तरह नाफिज कर दिया जाए। नहीं, मैं अपनी राय दूंगा, उसको बयान करूंगा, जब वो इल्म और इस्तदलाल की बुनियाद पर अपनी जगह बनाएगी, जब वो पार्लियामेंट की अक्सरियत को मुतासर करेगी, अब उसकी रोशनी में किसी कानून में तब्दीली आनी है, 100 साल बाद आनी है, 200 साल बाद आनी है, वो तभी आनी चाहिए। उससे पहले इस तरह का काम आप करने या कराने की कोशिश करेंगे तो आप गलत करेंगे। ये बात आपने यहाँ से उठाई थी कि अगर किसी मनसब पर आप बैठे हुए हैं तो वहाँ भी यही करेंगे, या मनसब छोड़ के घर आएंगे या फिर यही करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए अभी थोड़े अरसा पहले, आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने ये हमारे जो दस्तूर में बयान किया गया है सादिक और अमीन, इस पर शदीद तनकीद की है और ये कहा है कि इसको ख़त्म होना चाहिए,
जी
फैसलों में लिखा है।
जी हाँ जी
उसके बाद इसी की बुनियाद पर फैसला दिया
नाहल करार दिया लोगों को।
और ये कह के दिया कि भाई मैं तो कह रहा हूं ये गलत है, इसको तब्दील करो, लेकिन मैं इस मौजूदा आईन के तहत इस मनसब पर बैठा हूं, चीफ जस्टिस के मनसब पर, इसलिए एक गलत बात जिसको मैं गलत समझता हूं नाफिज तो उसी को करूंगा। यानी मेरे पास इंतखाब यही है ना
जी हाँ
कि मैं अगर समझता हूं कि हमारे यहां कानून और आईन में बास गलतियां हैं तो छोड़ के आ जाऊं, और या फिर यह है कि वहां बैठा हूं तो उसके मुताबिक ही मामला होंगे। तो यही असल में सही रास्ता है, क्योंकि आप अनारकी नहीं पैदा कर सकते। ये नहीं हो सकता कि एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो कानून और आईन में कुछ लिखा हुआ और फैसला किसी और चीज के मुताबिक कर दे, ये नहीं हो सकता। तो उस फैसले पर तनकीद की जाएगी, उसे गलत करार दिया जाएगा। तो आपके लिए सही रास्ता क्या है, इसको हमारी कौम को समझना चाहिए कि अहले इलम का काम यह है कि छोटी से छोटी गलती भी अगर किसी कानून में किसी फैसले में है उसकी निशानदेही करें, उस पर तनकीद करें, उसकी गलती वाजे करें, लेकिन जब तक वो कानून है उस वक्त तक नाफिजुल अमल माने उसको, उसके खिलाफ बगावत नहीं की जा सकती,
ठीक
उसकी गलती वाजे की जाएगी। तो मैं जब ये कहता हूँ कि करारदादे मकासिद की कोई ज़रूरत नहीं थी, इन इस्लामी दफ़ात की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, असल ज़रूरत किस चीज़ की थी, हुक्मरानों के अंदर ये शऊर पैदा किया जाता और कानून साजी कराई जाती, यानी जो इस्लाम की हिदायत हैं उनके तहत मुसलमानों के लिए कवानीन बनाए जाते। ऐसा होता तो हमारे दीन की तालीमात हुक्मरानों के जरिए से नीचे उतरती। तो हमने क्या किया कि ऐसी बातें की कि जो गैर मुस्लिमों के लिए तकलीफ का बायस हुई और नतीजा कुछ भी नहीं निकला।
ठीक। अच्छा हम सर, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है ये। इसमें एक पहलू और मुझे लगता है, फिर हमारा खात्मे की तरफ वक्त भी जा रहा है। इसमें एक नुक्ता नज़र मज़हबी उलमा की तरफ से आता है कि दीन शरीयत की वो बातें हैं कि जिनको समझने में हमने उम्र गुजारी है, उनको इन बुद्धू लोगों के साथ जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिनको ना हैज़ नफास के मसाइल पता है, ना तलाक का पता है, ना कुरान सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, उनकी सवाबदीद पे छोड़ दें, वो फैसला करेंगी। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ही माजी में उनका ज़्यादा ताल्लुक उन हुक्मरानों से रहा जो खुद फैसला करते, मतलब ज़ियाउल हक़ साहब की मिसाल हमारे सामने, उनसे बहुत सारी इस वक्त भी जो मज़हबी कवानीन का ढांचा हमारे मौजूद है उन्हीं के अहद में वो परवान चढ़ा। तो उनका नुक्ता नज़र ये है कि इसको बरह रास्त ही ऊपर से कानून के जरिए नाफिज करवा दिया जाए, इसको कैसे देखें?
फिर बराह रास्त का तो एक ही तरीका है ना, ये कि आप इसके बाद एक उसूली फैसला भी कर लें कि ना आप इंतखाबात कराया करें, ना पार्लियामेंट बनाया करें। फिर जब आपकी फौज का सरबराह रिटायर हो तो उसको कहें कि वो मुमलकत का संभाल लें, यानी फिर मार्शल लॉ लगाने की भी बेचारे को क्यों तकलीफ देते हैं। फिर एक कायदा बना लें, नहीं फौज में एक आदमी तैयार हो गया, बड़ी उम्र को भी पहुँच गया, अब कमांडर इन चीफ की हैसियत से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से रिटायर हुआ है, तो रिटायर हुआ है तो बस उसके अगले दिन वो ममलकत के सरबराह का ओहदा संभाल ले, ये पार्लियामेंट, ये वजीर आजम सब खत्म करें, वो फिर एक फाइनल अथॉरिटी के तौर पर हुक्मरान की हैसियत से मुल्क को चलाए, और जिस वक्त अगला आर्मी चीफ रिटायर हो तो ये भी रिटायर हो जाए और वो उसकी जगह ले ले। देखिए कितना अच्छा निज़ाम बन जाएगा, ना आपको इंतखाबात कराने की ज़रूरत, ना कुछ और करने की ज़रूरत, ये सब चीज़ें होंगी। मौलाना सैयद अबुल्ला साहेब मौदूदी जिस वक्त ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लगा तो कहीं रावलपिंडी में थे, तो वहाँ उन्होंने किसी मजलिस में ये बात कही कि ये जो हम कहते थे कि इस्लाम आना चाहिए, ज़ियाउल हक साहब ज़ाहिर है इस्लाम की बहुत बात करते थे, एक मजहबी आदमी थे, तहज्जुद गुजार आदमी थे, उनकी ज़ाती औसाफ़ खसाइस का मैं ख़ुद बहुत कायल हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इस्लामी निज़ाम की हम जद्दोजहद कर रहे थे, तो देखिए वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंतखाबात से आए, उसके और भी रास्ते होते।
अच्छा
ये जब बयान छपा तो उस ज़माने में ज़िंदगी रसाला निकलता था, तो हमारे मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर उसमें एक अदारिया लिखा, मौलाना मौदूदी ने ये क्या कह दिया, पढ़ सकते हैं लोग उसको निकाल के। ये हुआ तो उसके 2 दिन के बाद मौलाना वाहिद तशरीफ़ लाए तो असर की मजलिस में बैठे हुए थे। मैंने मौलाना से एक सवाल किया, हम तो उस वक्त नौजवान थे, तालिबे इल्म थे। मैंने उनसे ये कहा, ये जो इस्लामी निज़ाम अब इस तरीके से आ गया है, अगर इसकी जगह कोई याया खान की किस्म के आदमी ने मार्शल लगाया होता तो फिर क्या आता?
फिर तो कोई और निजाम आ जाता।
यानी ये आप कौम मुल्क को किन लोगों के हवाले कर रहे हैं? किसी आदमी की शख्सियत की बुनियाद के ऊपर ऐसी आरा क्यों कायम की जाए? तो एक जमहूरी माशरे के अंदर जब पार्लियामेंट को आपने कहा है कि वो कानून साजी करेगी, उसके पास आखिरी फैसले का इख्तियार है, तो उन्हीं लोगों को कायल करना होगा। और ये भी एक बिल्कुल गलत फहमी है कि पार्लियामेंट को इश्तिहाद करने के लिए बैठी होती है, इश्तिहाद अहले इल्म ही करते हैं।
कमिटीज बनी हुई
इस वक्त
होती
जो कानून बनता है, आम कानून, मैं मजहबी कानून की बात नहीं कर रहा, क्या उसके माहरीन होते हैं सब लोग?
नहीं।
नहीं, वो असल में क्या करते हैं, वो कौम की विल का इजहार करते हैं कि अब ये जो अहले इल्म की आरा हैं, इनमें से इस राय के मुताबिक हम कानून बना रहे हैं। आम आदमी क्या करता है? आम आदमी अबू हनीफा शाफई मालिक होता है, वो मेरी राय या मौलाना मौदूदी की राय या मौलाना शबली थानवी की राय, इनमें से किसी राय के इस्तदलाल को उस तरह समझ लेता है। वो भी जाहिर बात है कि अपने इल्म अकल की बुनियाद पर अपने लिए फैसला करता है कि किसकी राय कबूल करनी है। तो पार्लियामेंट क्या है? वो कौम की कबूलियत का फैसला है। यानी अहले इलम की आरा में से अहले इलम ही आरा देते हैं। कमेटीज़ में वही चीज़ ज़ेर बहस आती है, अच्छे अहले इलम को सुना जाता है, माहरीन कानून को सुना जाता है, उसके बाद जिस तरह एक फ़र्द फैसला करता है कि मुझे अपने एक ज़ाती मसले में किस आलिम की राय को इख्तियार करना है, ऐसे ही पार्लियामेंट को, या वो अफराद पार्लियामेंट बन गए हैं, वो फैसला करते हैं। तो कोई पार्लियामेंट ना इश्तिहाद करती है ना तहकीक करती है, तहकीक अहले इलम करते हैं हर मामले में। इस वक्त देखिए, मैं मुसलसल क्या बात कह रहा हूँ, इस वक्त एक तिब्बी मसला ज़ेर बहस है। मैं ये कह रहा हूँ, माहिरीने तिब बताएंगे कि हमें क्या करना है, मस्जिद खोलनी है या नहीं, मार्केट खोलनी है या नहीं, लॉकडाउन करना है या नहीं, इस बीमारी से निमटने का क्या तरीका, कौन बताएगा? माहिरीने तिब। उनकी राय को समझ कर उसे कानून बनाने का फैसला कौन करेगा? पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट
हुक्मरान। तो यही तरतीब है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट के अरकान या वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको अब कॉलेज में दाखिला कराएं ताकि वो तिब के माहिर बने, इसलिए कि मसला तो पेश आ गया। तो जो काम इस वक्त कहा जा रहा है वही दीन के मामले में होगा।